Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Giri Nibham ചാരുചന്ദ്രാവതംസം രത്നകൽപോജ്വലാംഗം പരശുമൃഗവര വീതിഹസ്തം പ്രസന്നം പദ്മാസീനം സമന്തത് സ്തുതമമരഗണെ വ്യഗ്രകൃത്തിം വസാനം വിശ്വാദ്യം വിശ്വവന്ദ്യം നിഖിലഭയഹരം പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിനേത്രം നാരായണം പദ്മഭവം വസിഷ്ഠം ശക്തിം ച തത്പുത്രപരാശരം ച വ്യാസം സുഖം ഗൗഡപദം മഹന്തം ഗോവിന്ദയോഗീന്ദ്രമഥാശിഷ്യം ശ്രീശങ്കരാചാര്യമഥാശ പദ്മ പാദഞ്ച ഹസ്താമലകഞ്ച ശിഷ്യം തന്തോടകം വാർത്തികകാരമന്യാൻ അസ്മത് ഗുരും സന്തതമാനതോസ്മി വിശുദ്ധജ്ഞാനദേഹായ ത്രിവേദി ദിവ്യചക്ഷുസേ ശ്രേയഃ പ്രാപ്തിനിമിത്തായ നമഃ സോമാർത്ഥധാരിണേ ഓം ശാന്തി 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 ശിവായ നമ ഓം ശിവായ നമ ഓം ശിവായ നമ ഓം നമ ശിവായ ശിവായ നമ ഓം നമ ശിവായ ശിവായ നമ ഓം ശിവായ നമ ഓം ശിവായ നമ ഓം നമ ശിവായ ഹരായ നമ ഓം ഹരായ നമ ഓം ഹരായ നമ ഓം നമോ ഹരായ ഹരായ നമ ഓം ഹരായ നമ ഓം ഹരായ നമ ഓം നമോ ഹരായ ഹരായ നമ ഓം നമോ ഹരായ ബാബായ നമ ഓം ബാബായ നമ ഓം ബാബായ നമ ഓം നമോ ഭവായ ബാബായ നമ ഓം നമോ ഭവായ ബാബായ നമ ഓം ബാബായ നമ ഓം ബാബായ നമ ഓം നമോ ഭവായ ബാബായ നമ ഓം ബാബായ നമ ॐ नमो भवाय मृडाय नमो मृडाय नमो मृडाय नमो नमो मृडाय मृडाय नमो नमो मृडाय मृडाय नमो मृडाय नमो मृडाय नमो नमो मृडाय मृडाय नमो नमो मृडाय शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमो नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
ॐ ॐ ॐ।
श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। कल हमने उपक्रम किया था, आप लोग हमें बहुत वर्षों से जानते हैं और हमारी परंपरा है कि हम किसी भी विषय को, वेदांत विषयों को प्रवचन करने से पहले उसके श्लोक या मंत्रों को हम उच्चारण किया करते हैं। चार पांच श्लोक या मंत्र को हम उच्चारण करते हैं, आप भी हमारे साथ साथ अभ्यास करें। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट ने आपके पास ये चतुर्थ अध्याय के इन मंत्रों को फोटोकॉपी के माध्यम से आपको दी गई है, आपके पास उपलब्ध करा दिया गया है। एक महीने तक इसको आप सुरक्षित रखें, घर लेकर जाएं तो दूसरे दिन लेकर आएं। लेके आते समय आने के यदि आप भूलते नहीं हैं तो ले जाएं। या एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगाद् योगाद् है अव्वार आएगा। या एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगाद् वर्णाननेकान् निहितार्थो ददाति वीचैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या सुवया संयुनक्तु तदेवाग्निस्तदादित्यस्य तद्वायुस्तदुचन्द्रमः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्मा तदापस्तत्प्रजापतिः तं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षस् तडिद्गर्भा ऋतवः समुद्रः अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे येतो जातानि भुवनानि विश्वा अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णाम् बहवि प्रजाः सृजमानां स्वरूपः अजो एको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजन्यः वेद के मंत्र इतने अच्छे हैं कि इसको अभ्यास हो तो पढ़ते ही बड़ा आनंद आता है। भगवान शंकराचार्य जी चतुर्थ अध्याय के आरंभ में ये कहते हैं, गहनत्वाद अस्य अर्थस्य भूयो भूयो वक्तव्य इति चतुर्थ अध्याय आरभ्यते। कोई भी कठिन विषय ये कठिन है करके छोड़ने के लिए नहीं है। तुम्हें पता चल गया कि यह कठिन है, तब तुम्हें यह निश्चय करना है कि इसको मुझे समझना है। कठिन है इसीलिए मुझे समझना है। उसके लिए क्या करना है? तो शंकराचार्य जी शब्द प्रयोग करते हैं, भूयो भूयो वक्तव्य, बार बार अभ्यास करो। भूयो भूयो वक्तव्य, इसका अर्थ क्या हुआ? भूयो भूयो श्रोतव्य। कठिन है इसीलिए बार बार इसको उच्चारण करना चाहिए, यानी कहना चाहिए, इसकी व्याख्या करनी चाहिए। इसका अर्थ इतना ही नहीं है कि कठिन है इसलिए इसकी व्याख्या करनी चाहिए, साथ में इसका अर्थ यह हुआ कि ये कठिन है इसलिए बार बार सुननी चाहिए। और क्योंकि श्रोता होंगे तब व्याख्याकर्ता व्याख्या करेगा, क्योंकि व्याख्याता होंगे तब श्रोता सुनेगा। व्याख्या करने वाला एक बार व्याख्या कर देगा तब श्रोता बार बार कैसे सुनेगा? खैर, आज तो प्रेमपुरी आश्रम ने वो व्यवस्था मिला दी, सीडीओ में रख दिया है, तो व्याख्याकर्ता एक बार व्याख्या कर देगा तो भूयो भूयो वक्तव्य ये पंक्ति आज अनुपयुक्त हो गया। शंकराचार्य जी ये जो कह रहे हैं कि बार बार व्याख्या करनी चाहिए, बार बार प्रवचन करनी चाहिए, ये बात प्रेमपुरी आश्रम ने अनुपयुक्त सिद्ध कर दिया है। क्योंकि एक बार ठीक से प्रवचन कर दो तो वक्ता एक बार बोले तो काम बन जाएगा, लेकिन श्रोता बार बार सुनना पड़ेगा। कैसेट तो बार बार सुननी पड़ेगी ना, श्रोता तो एक बार सुनने से काम नहीं होगा ना। वक्ता तो एक बार बोल देगा, रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड हो जाएगा, उसमें सुरक्षित हो जाएगा। तो आप लोगों की अपेक्षा हमको सुविधा मिल गई, क्योंकि हमें बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, परंतु आपको बार बार सुनना पड़ेगा। इसलिए शंकराचार्य जी पुनः चतुर्थ अध्याय आरंभ करने के औचित्य है ये बात सिद्ध करना चाह रहे हैं। देखो आनंद लेने के लिए बार बार उसका रिपीट करना ही पड़ता है। आप लोगों ने पशुओं को देखा है, गाय को देखा है, घोड़े को देखा है, भले ही आप गाय नहीं पालते हो लेकिन देखा है। गाय पशु जब उनको मौका मिलता है तब खूब खाते हैं, लेकिन जब आराम करते हैं तब उस खाए हुए को बार बार चबाते हैं, निकालते हैं, चबाते हैं, फिर उसको लेते हैं। वो ये समझते हैं, एक ग्रास लिया और उसको धीरे धीरे चबाकर पूरी तरह उतार ले में, तब उसके बाद वो घास छूट जाए, क्या पता मालिक कहीं और घास उधर ले जाए, क्या पता वो जहां चरने के लिए गए वहां से फिर वापस बोट में लेके बंद कर देवे, तो मिलेगी ना मिले, वो सबको पकड़ लेता है, फटाफट मुख में भर लेता है। उसके पास एक अलग स्टोरेज उसके पेट में रहता है, वो ग्रहण किए हुए, पहले ग्रहण किए हुए घासों को वो एक जगह स्टोर करके रखता है। वो काम अभी सीडी डीवीडी MP3 कर रही है, एक बार जो प्राप्त हुआ है उसको स्टोरेज करके रखता है। जैसे गाय एक बार जो घास उसको मिल गया उसको मुख से लेकर अंदर शरीर में एक जगह सुरक्षित स्टोर करके रखता है, रखती है। फिर उसके बाद वो बैठे बैठे आंख बंद करके वहां से कुछ निकाला थोड़ा, फिर उसको खूब चबाया, फिर ठीक जगह उसको सप्लाई किया। ये प्रकृति ने उनको ये व्यवस्था मिला दी है, हमें प्रकृति ने वो अन्याय किया है, वो व्यवस्था प्रकृति ने शायद नहीं दी हो। हम जो खाते हैं जितना खाते हैं वो सीधे ही पेट में चला जाता है और वहां वो पचन हो गया, पच गया तो पच गया, नहीं पचा तो कच्चा निकल गया। एक बार गले से नीचे उतर जाने के बाद वो अन्न हमारे दोबारे मुख में आकर उसको चबाने की व्यवस्था प्रकृति ने हमारे साथ नहीं की, परंतु पशुओं के साथ। आप लोगों ने देखा मंकी पूरा मुख में भर लेता और यहां स्टोर करता है, फिर जब फुर्सत होती है तो वो यहां से निकालता है, फिर चबाता है, फिर खाता है। गाय भैंस ऐसे करते हैं, घासों को मुख के अंदर लेकर एक जगह रखते हैं, फिर फुर्सत में वो चबाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसको हिंदी भाषा में जुगाली करना कहते हैं, हिंदी भाषा में उसको जुगाली कहते हैं। जुगाली माने उसको बाद में चबाना। तो शंकराचार्य जी ये बात कह रहे हैं, इसलिए भूयो भूयो वक्तव्य, भूयो भूयो वक्तव्य बार बार, क्योंकि कठिन है इसलिए बार बार इसकी व्याख्या होनी चाहिए, कठिन है इसलिए बार बार इसका श्रवण होना चाहिए। संत तुलसीदास जी ने इस बात को इन पंक्तियों के द्वारा कह दी है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाला मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी सुजान हो जाता है, विद्वान हो जाता है, प्रतिभावान हो जाता है, उसके सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। अभ्यास का खेल है ये, करत करत अभ्यास जड़ मति होत सुजान। इसलिए सत्संग में सत्संग श्रवण से भी ज्यादा अभ्यास का महत्व है। आप लोगों को कई बार महात्माओं ने कहा है, आचार्य शंकर तो यहां तक कहते हैं, श्रवण से 100 गुना ज्यादा मनन होना चाहिए और मनन से 1000 गुना ज्यादा निधिध्यासन होना चाहिए। वेदांत हमारे जीवन में फलीभूत क्यों नहीं होता है? और हम समझ लेते हैं कि श्रवण कर लिया तो अब वेदांत हमारे जीवन में रग रग में उतर जाएगा। नहीं उतरेगा, जीवन में उसको पचाना चाहिए। वो पचेगा कब? जीवन पचेगा कब? माने वेदांत पचेगा कब? जब निधिध्यासन होगा तब। अब जो अन्न खाते हैं, आप कहते हैं कि कमजोर हो गए तो घी खाना चाहिए। घी खाने से ताकत आएगा कब? वो खाया हुआ घी यदि डाइजेस्ट हो गया, पच गया, तो आपके शरीर में ताकत के रूप में काम करेगा। वो घी यदि नहीं पचा तो आपके शरीर के लिए जहर के रूप में बदल जाएगा। वो घी जैसा खाया वैसे ही निकल जाएगा, तो वह फिर शरीर के लिए जहर का काम करता है, रिएक्शन होता है। इसलिए तो कहा है आचार्यों ने, अनभ्यास विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। ये देख लो, अभ्यास बिना का विद्या वह आपके जीवन के लिए नुकसानदायी होगा और जीर्ण न हुआ हुआ अन्न, जीर्ण माने जो नहीं पचा है, अपच हुआ है, वह भोजन अन्न आपके लिए विष बन जाएगा। पचा हुआ अन्न आपके लिए दवा औषधि के रूप में काम करेगा, आपके ताकत के लिए काम करेगा। इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। इसी क्रम में श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय को पुनः आरंभ कर रहे हैं। यहां कई बार वही प्रसंग आवृत होंगे, आते रहेंगे। कई बार तो एक ही मंत्र एक ही उपनिषद में दो दो बार आते हैं, तीन तीन बार आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये महाराज एक ही उपनिषद में यही मंत्र फिर क्यों ये रिपीट हो गया, क्यों आवृत हुआ? सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना में तो ये बात कही दी है। बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए, असकृत पुनराभ्यास। या एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान अनेकान निहितार्थो ददाति विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः सनो बुद्ध्या सुवया संयुनक्तु। आप लोगों ने कई बार वेदांत श्रवण के अंतर्गत परमात्मा के तीन स्वरूप के बारे में सुना है। परमात्मा का पहला स्वरूप, असली स्वरूप, सब निर्गुण निराकार। परमात्मा का दूसरा स्वरूप सगुण निराकार, और परमात्मा के तीसरा स्वरूप सगुण साकार। अवरोहण क्रम में वह निर्गुण निराकार परमात्मा सबसे पहले सगुण निराकार होता है, जिसका कल्याण निर्गुण निराकार से हो गया उसके लिए तो वो पर्याप्त हो गया। निर्गुण निराकार है और निर्गुण निराकार से उसका उद्धार हो गया। लेकिन परमात्मा भी ये समझता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उत्तम अधिकारी न होकर मध्यम अधिकारी हैं, वे लोग इस स्वरूप को नहीं पचा पा रहे हैं, वे लोग इस स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो परमात्मा किसी एक विशेष गुणों को लेकर या अनेक गुणों को लेकर उसके चिंतन का विषय बन जाता है, विचार का विषय बन जाता है, चिंतन का विषय बन जाता है। मध्यम अधिकारी के लिए तब वह सगुण निराकार रहता है। उससे भी कुछ और मंद अधिकारी हैं तीसरे नंबर के, हमारे जैसे, आप जैसे नहीं, तो हमको जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा